the main motive of our gathering over here is that is the topic of ours. Today's we are discussing about that. It is not a message. It is just a sharing and which we are having to discuss about the love of God and the fellowship of God.
आज हम लोग कोई बड़ा संदेश नहीं सुन रहे, खाली परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर की संगति के बारे में थोड़ा हम लोग बांट रहे हैं.
So it's a kind of another cross which we can able to see that how we have a fellowship with God and with a fellowship with one another.
और हम लोग एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ हमारा संगति कैसा है और क्या है हम लोग बता रहे.
There is a one occasion has been came in Jesus' life that when he was teaching to his disciples. And somebody came to him and told him that hey, your family members has been came to meet you.
एक जगह पे यीशु मसीह किधर सिखा रहे हैं और उसके परिवार वाले उसको मिलने आए, तो यीशु मसीह को कोई आके बताता है तेरा परिवार वाले आपसे मिलने आए.
And Jesus is telling that these are my family members who are listening the word of God and they are applying that word of God into their life.
यीशु मसीह तभी उनको बताते हैं कि ये मेरे परिवार वाले भाई बहन सब हैं जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं.
सो वी ऑल्सो वॉन्ट्स टू डिस्कस अबाउट एंड थिंक अबाउट दिस थिंग दैट व्हाट इज द फेलोशिप ऑफ गॉड विच वी हैव एंड व्हाट इज द फेलोशिप ऑफ टूवर्ड्स अवर फैमिली मेंबर्स वी शुड हैव टू कीप.
और हम यही सोचने वाले हैं कि परमेश्वर के लोगों के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए और हमारा परिवार वालों के साथ नहीं तो कैसा होना चाहिए.
So, one thing we can able to see that the fellowship of God is started at the time of Adam.
हम ये देख सकते हैं कि आदम के समय से परमेश्वर का जो संगति है मनुष्य के साथ शुरू हो गया.
Genesis chapter 1 verse 27 to 28 you can see.
उत्पत्ति का 1:27 और 38 में ऐसा लिखा है.
That God has created first male and female. And then he had a fellowship with them.
तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसको मनुष्य को सृष्टि किया.
And he blessed them.
और परमेश्वर ने उनको आशीष दी.
And what is the purpose of that? He just blessed them to have a fellowship with him on this earth.
और आशीष इसके लिए किया क्योंकि वो आशीष पाके परमेश्वर के साथ एक संगति में उन लोग जी सके.
एंड नॉट ओनली दैट व्हेन एडम वाज इन फेलोशिप विद गॉड गॉड हैज गिवन हिम शेल्टर मींस ईडन गार्डन.
और जब परमेश्वर के साथ उस संगति में था वो बहुत ही अच्छा वातावरण के साथ आदम को ईडन के बगीचे में परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा था.
ईडन गार्डन वाज हिज हाउस.
ईडन का बगीचा बोलेगा तो उनका घर था.
God has given him a wife.
और परमेश्वर ने उनको एक पत्नी दिया.
God has given him every sort of a food of the tree which having a fruit.
और परमेश्वर ने उस बगीचे का जो भी पेड़ है उसमें से फल खाने का आजादी उनको दिया.
So it's a religion we can able to see that when we have a fellowship with God, we have everything added unto us with his fellowship.
और हम ये देख सकते हैं कि जब परमेश्वर के साथ हमारा संगति है तो उसके साथ जो भी हमारा जरूरत है वो सारे बात परमेश्वर उसके साथ ही जोड़ता है.
एंड गॉड इज सो फेथफुल टू हिम दैट ही इज गिवन हिम अथॉरिटी टू रूल ऑल ओवर द अर्थ व्हिच हैज बीन क्रिएटेड फॉर हिम ओनली.
और परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि जो भी उसने बनाया सारे सृष्टि के ऊपर राज करने के लिए उसको उसने अधिकार दिया.
सो वी कैन एबल टू से दैट गॉड इज एवर वांट दैट ही दैट फेलोशिप विद अस.
और हम ये बता सकते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें.
बट लेटर ऑन वी फाइंड दैट इन जेनेसिस चैप्टर 2 एंड 7 एंड 9 दिस फेलोशिप गॉट ब्रोकन.
उत्पत्ति का 2:7-9 में हम देखते हैं कि वो जो संगति है वो टूट गया.
एंड God asked first question to Adam, where are you?
और आदम से परमेश्वर पहला सवाल पूछते हैं कि तुम कहाँ हो?
And this question is, I just want to request that this question we need to ask ourselves also.
और हम ये सवाल जो परमेश्वर ने आदम से पूछा हम भी अपने आप से पूछना चाहिए कि हम कहाँ हैं?
And this question also gives us answer various way, but we need to ask these questions, that are we in the fellowship of God or not?
ये सवाल से हमको बहुत सारे बातों का जवाब मिलता है कि हम परमेश्वर के साथ संगति में किधर है.
And we need to be developed in that fellowship or not?
और हम वो जो संगति है उसमें बढ़ रहे हैं कि नहीं.
God wants us to be fellowship. Still, if we have some kind of a sin in our heart.
हम हमारे जीवन में कोई पाप आया, हमारा दिल में कोई पाप है, फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संगति में वापस आ जाए.
That's why he done in this some arrangement for us, that is Jesus Christ.
इसलिए उसने ये सब योजना हमारे लिए किया कि यीशु मसीह को इस संसार में भेजा.
Jesus was called as Emmanuel.
यीशु मसीह को इमैनुअल करके लिखा गया है.
Means God who is living among us.
इमैनुअल का अर्थ है कि हम परमेश्वर जो हमारे साथ निवास करने वाला.
You know, for this fellowship, Jesus had paid upon price.
और ये संगति हमारे साथ होने के लिए यीशु मसीह ने बड़ा एक मूल्य हमारे लिए चुका था.
You can read in chapter John chapter.
योना सुसमाचार.
John chapter 17.
योना 17:22-23.
20 and 23. We find Jesus in Gethsemane garden. Gethsemane garden, Jesus is praying to God.
Gethsemane ka bagiche mein Yeshu Masih prarthna kar rahe hai pita se.
That Father, you just be with the people who loves you, who wants to have a fellowship with you.
और वो प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, जो मेरे साथ संगति चाहता है ऐसे लोगों के साथ तू रहना कर.
So we can see that prayer, that prayer is.
हम वो प्रार्थना देखेंगे.
I do not ask behalf of these alone, but for those who believe in me through their word.
20 वचन. मैं केवल इन्हीं के लिए विनंती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो.
21 that they may all be one.
कि वे सब एक हो.
Even as you Father are in me, I in you.
जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुम में है.
So this is the basic thing which has been asked by Jesus Christ also, that he wants fellowship with us who are having the word of God in their heart and they are dedicated to their life to him.
और ये यीशु मसीह का भी प्रार्थना है कि जो लोग यीशु मसीह का वचन सुन के उसके ऊपर चलने वाले हैं उनके साथ संगति यीशु मसीह और पिता परमेश्वर दोनों चाहते हैं.
And for that he paid a price on a cross.
इसलिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हमारे लिए बलिदान हुआ.
When he became a sin for us.
जब वो हमारे लिए पाप बन गया.
That fellowship got broken.
और उस समय पिता परमेश्वर के साथ जो संगति था यीशु मसीह का उस समय टूट गया.
Jesus having a very strong fellowship with God Almighty.
यीशु मसीह का और पिता परमेश्वर का बहुत ही निकट का एक संगति था.
We saw in the various verses in the Bible that he always wake up in the morning, he went to the Mount of Olives and he spent a lot of time with God.
हम बहुत सारे वचनों में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह सुबह होने से पहले ही अकेला होके पर्वत के उधर जाके पिता परमेश्वर के साथ समय बिताता है.
He's most of the time he's spent in prayer. In the spirit he is fullness of we can able to see in his life.
और वो हम समय पिता के साथ आत्मा में हमेशा जुड़ते हुए हमेशा उसने पिता के साथ संगति में बिताया.
In fact the fellowship with his father is precious thing for him.
और पिता परमेश्वर के साथ जो संगति है यीशु मसीह का जीवन में सबसे मूल्यवान चीज था.
आई थिंक द पेन ऑन द क्रॉस इज नॉट अ बिग कॉस्ट फॉर हिम फॉर अस.
यीशु मसीह का जो शारीरिक दंड जो है वो हमारे लिए उतना बड़ा यीशु मसीह नहीं समझता था.
बट द ब्रोकननेस ऑफ दिस फेलोशिप इज द बिगेस्ट कॉस्ट ही हैज बीन पेड फॉर अस.
लेकिन जो पिता के साथ उसका संगति तो टूट गया है वही सबसे बड़ा कीमत जो है यीशु मसीह के लिए था.
दैट्स व्हाई इन मैथ्यू चैप्टर 26:39 दैट ही हैज बीन prayed very much passionately to father that father let this cup pass from me
isliye Matthew 26 mein wo aisa prarthna karta hai ki hey pita ye katora ho sake to nikal dena
Matthew chapter 26 verse 39 we can be able to read
26 ka 39 mein se likha hai
and he went little beyond them and fell on his face and prayed saying my father it is possible let this cup pass from me yet not as I will but as you will
फिर वो थोड़े और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसे ही हो
सो यू कैन वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट द फेलोशिप ऑफ फादर इज वेरी मच कंसर्न एंड प्रेशियस फॉर जीसस क्राइस्ट
इससे हम समझ सकते हैं कि पिता परमेश्वर के साथ जो यीशु मसीह का जो सहभागिता है वो यीशु मसीह कितना मूल्य देता था
एट द सेम टाइम हिज फेलोशिप विद डिसिपल्स इज ऑल्सो मैटर्स फॉर हिम
और उसी समय में यीशु मसीह का जो उनके चेलों के साथ जो रिश्ता है नहीं तो जो संगति है वो भी यीशु मसीह के लिए बहुत ही मुख्य बात था
जॉन चैप्टर 1 वर्स 38 एंड 39 वी कैन सी दैट एंड्रयू आस्क हिम हे राबी वेयर यू आर स्टेइंग
योना 1 का 38 39 में एंड्रयू यीशु मसीह से पूछता है कि यीशु आप कहां रहते हैं
देन जस्ट जीसस हैज रिप्लाइड हिम कम एंड सी
तब यीशु मसीह उसे बोलता है कि तू आके देख
देन देयर्स एंड्रयू वेंट टू अलोंग विद हिम टू हिज होम
और यीशु मसीह के घर में एंड्रयू फिर रहने लगा
ही केम टू हिम ही सॉ हाउ जीसस लिव्स एट हिज होम एज हिज होम
और यीशु मसीह कैसा घर में जीता है वो एंड्रयू एक दिन देखा
ही हैड अ फेलोशिप विद हिम
और उसके साथ संगति हुआ
देन एंड्रयू गॉन एंड ही ब्रॉट नथानियल पीटर एंड ऑल द रिमेनिंग डिसिपल्स अलोंग विद हिम
फिर एंड्रयू जाके उसका भाई पत्रोस और नथानियल से बोल के उनको सब यीशु मसीह के बारे में बताता है
सो दिस इज द थिंग दैट व्हेन ही हैज अ स्ट्रांग फेलोशिप विद फादर इट रिजल्ट्स दैट ही कैन हैव अ डेवलप अ वेरी गुड डिसिपल फेलोशिप विद हिज डिसिपल्स एंड हिज फैमिली मेंबर्स
और जब यीशु मसीह के साथ वो संगति में है तभी वो उनके उनके जो परिवार वालों के साथ भी अच्छा संगति कर सकते हैं
सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू लर्न एंड इन अवर लाइफ ऑल्सो दैट हाउ अवर रिलेशनशिप इज इंक्रीजिंग अवर फेलोशिप इज इंक्रीजिंग इन फॉर फादर इट विल ऑटोमेटिकली इफेक्टिव फेलोशिप विद अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन अवर चर्च ऑल्सो
और वही हमको ध्यान देना है कि जितना हमारा जो यीशु मसीह के साथ संगति बढ़ते जाता है उतना ही हम लोग एक दूसरे के साथ संगति में और बढ़ सकते हैं
इन जॉन चैप्टर 16 वर्स 7 इट इज बीन टोल्ड बाय जीसस दैट इट इज बेटर टू दैट आई मे गो फ्रॉम यू सो दैट द हेल्पर कैन कम इन मिड्स ऑफ यू
योना 16 का 7 में यीशु मसीह बोलता है कि मैं इधर से जाना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि जब मैं जाएगा तो एक सहायक तुम्हारे लिए आएगा
Because Jesus was a alone person, he can one at a time can be in Capernaum, can be in Galilee, can be in Jerusalem.
यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में था तो एक जगह पे ही रहता था वो एक जब एक समय में कपरनहूम में एक समय में गलीली में एक समय में ऐसा एक ही जगह पे रहता था
He has limitations of his body.
उसका शरीर का एक सीमा था
दैट ही कुडंट एबल टू फेलोशिप विद एवरीवन ऑफ अस
वो हर एक व्यक्ति हर एक विश्वासी के साथ एक साथ संगति नहीं बिता सकते थे
बट एज द हेल्पर व्हिच इज द होली स्पिरिट व्हेन इट कम्स टू अस
जब पवित्र आत्मा जो सहायक हमारे जीवन में आ जाता है
देन इट इज रिलीज फ्रॉम दैट बॉन्डेज ऑफ अ बॉडी एंड फ्लेश
तब वो जो एक ही जगह पे सीमित जो यीशु मसीह का जो ये है सीमा है वो निकल जाता है
बिकॉज द होली स्पिरिट विल ओनली टेल्स अबाउट ऑल द थिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट टू अस
क्योंकि यीशु मसीह के बारे में ही पवित्र आत्मा हमें बताता है
एंड व्हेन वी रिसीव द होली स्पिरिट वी हैव अ फेलोशिप विथ एवरी टाइम विथ अवर गॉड एंड देयर इज नो लिमिट
और जब पवित्र आत्मा हमारा जिंदगी में आ जाता है तो हम हमेशा पिता के साथ संगति में हो सकता है कोई भी सीमा के बिना
एंड दिस इज अनदर काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन वी हैव इन आवर लाइफ व्हेन वी बिकम बॉर्न अगेन
और यही बड़ा एक आशीष हमारा जीवन में आ जाता है जब हमारा नया जन्म हो जाते हैं
वी व्हेन बिकम बॉर्न अगेन वी टेक अ वाटर बैप्टिज्म वी हैव अ होली स्पिरिट इन अस
हमारा नया जन्म होने के बाद हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है
बट मेनी टाइम्स इट्स हैपन्ड दैट Holy Spirit we may have after become born again, but we didn't surrender to that Holy Spirit from our life.
पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जब हमारा नया जन्म हुआ है, लेकिन बहुत बार बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा जीवन को हमने पूरा तरह से समर्पण नहीं किया हुआ था.
It's kind of a house in which some particular rooms we have been allotted that okay Holy Spirit you can come inside and you can have a fellowship with me.
ऐसा एक घर के जैसा है जो थोड़ा कमरा हम लोग ने खुला छोड़ा है कि पवित्र आत्मा आप उधर आ सकते हैं और उधर आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं.
But don't come in my TV room.
लेकिन मेरा टीवी का रूम में मत आओ.
Don't come in my computer's room.
मेरा कंप्यूटर का रूम में मत आओ.
Don't come in my magazine's room. Wherever I keep my whatever I'm reading those things. And those
मेरा जो मैगजीन है जो पढ़ते हैं उस कमरे में मत आओ.
So it totally depends upon us that how much we allow the access to that Holy Spirit in our life.
वो हमारे पर निर्भर करता है कि हम कितना पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हर क्षेत्र में अनुमति देता है.
सो ट्रू फेलोशिप इज दैट वी हैव अ टोटल सरेंडर टू द होली स्पिरिट एंड वी आर जस्ट इनविजिबल एंड जस्ट क्राइस्ट इज विजिबल इन अस.
और सही में जो संगति इस रीति से होता है कि जब हमारा जीवन का हर एक क्षेत्र हम प्रभु के लिए खोल देते हैं और बोलते हैं कि हम घटना चाहिए, हम नहीं होना चाहिए और यीशु मसीह हमारे में जीवित होना चाहिए.
बट थैंक गॉड दैट ही इज सो फेथफुल दैट ही इज वर्किंग इन आवर लाइफ एंड ही इज डूइंग दैट वर्क इन दैट वी कैन एबल हैव टू बेटर एंड बेटर फेलोशिप डे बाय डे थ्रू हिज ग्लोरी एंड थ्रू हिज पावर.
और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारा जीवन में काम करता है कि हम और परमेश्वर के साथ संगति में और परमेश्वर का प्यार में और बढ़ सके.
And the fellowship with one another, we can take an example of apostles.
एक दूसरे के साथ संगति में हम लोग प्रेरितों का जो उदाहरण ले सकते हैं.
See, the only in Bible we can say Jesus has told us to follow me, and afterwards Paul has told that follow me as I am follow Christ.
Bible में यीशु मसीह पहला बोलता है कि मेरा पीछा करो, और उसके बाद पौलुस प्रेरित भी बोलता है कि मैं जैसा मसीह का पीछा करता हूं वैसा तुम भी मेरा पीछा करो.
सो इन गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 17 एंड 18
गैलेशियंस 1 17 और 18 में
पॉल इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ.
पौलुस अपने बारे में बोलता है
दैट फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड हैज कॉल हिम फॉर हिज फेलोशिप इन अरेबिया ही वेंट एंड ही वेंट टू द दमास्कस एंड ही स्पेंट 3 इयर्स पीरियड ऑफ टाइम.
और पहला तो परमेश्वर ने उनको संगति के लिए बुलाया था, फिर उसके बाद वो अरेबिया में गया, दमास्कस में गया और 3 साल उधर बिताया.
सो दैट फर्स्ट वी कैन से ही हैड अ फेलोशिप विद होली स्पिरिट एंड गॉड हिमसेल्फ.
और पहला जो है उनका उसका संगति जो है परमेश्वर और पवित्र आत्मा के साथ था.
एक्चुअली ही वॉज नॉट ओनली इलिटरेट मैन, ही वॉज अ वेरी एजुकेटेड मैन.
वो अनपढ़ व्यक्ति नहीं था, बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था.
He is a Farsi, so he is trained under the Gamaliel at that time, Oxford University, you can say the person who is in worth in that way.
एक फरीसी था, गमालियल के साथ उसने पवित्र वचन को पढ़ा था और उस समय में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई करता है उसके समान हो गया वो.
So he had that fellowship because he need to be had some kind of a concept to be clear what is exactly the power of Holy Spirit in his life and he that need to be understand.
इसलिए उसको संगति का जरूरत था क्योंकि उसको समझना था कि क्या पवित्र आत्मा का जगह है हमारा जीवन में.
And then afterwards it is written that he went to directly to Jerusalem to have a fellowship with Peter, Apostle Peter.
और उसके बाद लिखा है कि वो यरूशलेम गया, पत्रोस के साथ उसका संगति हुआ.
So Peter was exactly opposite of him. He was just a fisherman, illiterate, and but he is having a full of Holy Spirit within him.
Petrus jo hai Paulus se ekdam ulta vyakti tha, wo anpadh vyakti, ek machhi pakadne wala aadmi, lekin pavitra atma se bhara hua vyakti tha.
So along with Peter he spent 15 days.
Aur Petrus ke sath wo 15 din bitaya udhar.
And there I just want to emphasize on that how he has fellowship with Peter.
और उधर मुझे ये बताना है कि कैसे उसका पत्रोस के साथ संगति हो गया.
We can imagine that they have interacted with each other. They might be roaming around Jerusalem.
और हम सोच सकते हैं कि यरूशलेम में उधर घूमते-घूमते उन लोग एक दूसरे के साथ बातचीत किए होंगे.
And Peter might be had been told, you know, this is the place where I denied Christ thrice.
और तभी पत्रोस ने बोला रहेगा यही वो जगह जिधर मैंने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था.
And he feels so bad in his heart that he feels so sad and he wept bitterly at that time.
और वो बोलता है कि मुझे बहुत दुख हुआ तब मैंने बहुत ही फुट फुट के रोया था.
And he remembers those things, and once again the tears may come to his eyes.
और वो याद करके शायद उसका आँख में तभी भी आँसू आए रहेंगे.
And that time Paul might be consolated him.
और उस समय में भी पौलुस ने बोला कि अभी उसको सांत्वना दिया होगा.
And Paul also took him to that place where he has been kept all the religious leaders' clothes at his feet.
और जिस जगह में पौलुस ने जो जो धर्मी विरोधी थे उनके जो कपड़ा संभाला था उस जगह पे भी पौलुस ने पत्रस को लेके हो गया होगा.
Where he was being kept those clothes and those people have been stoning Stephen.
और जिस समय में वो उधर कपड़ा संभाल रहा था उस समय में जो उन लोग स्टीफनस को पत्थरवा कर रहे थे.
And he also have been told him that I have been taken some authority letters from this religious leader to persecute the early Christians.
और उसने ये भी बताया होगा कि मैंने अधिकार का पत्र उन उन बड़ा लोगों से लिया था ताकि मैं मसीह लोगों का विरोध कर सकूं.
And he also been feel so sad about it and so regretted at that the remembrance of such kind of things he has been done.
उस समय में पत्र पौलुस को भी बहुत दुख हुआ रहेगा कि ये सब याद करके.
And at that time Paul has been regretted to remember all these such things he has been done.
हाँ, पौलुस को भी बहुत दुख हुआ रहेगा जब वो याद किया वो सब.
And Peter has been comforted him for that.
और जब तब पत्रोस ने उनको सांत्वना दिया रहेगा और शांति दिया रहेगा.
And then he started his ministry to the Gentile peoples, how we should have a fellowship.
और उसने फिर जो अन्य जाति के लोगों के साथ कैसा हम लोग संगति करना चाहिए पौलुस ने बताया.
That's why he can able to develop a very huge numbers of church surround this Arabia and various places or wherever he travel.
और जिधर भी पौलुस जाता था अलग अलग जगह में इसलिए उसको कलीसिया का निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने उपयोग किया.
Because he understand the importance of the fellowship which with God we need to have and with one another we should have.
क्योंकि उसने ये समझ लिया कि परमेश्वर के साथ और हर एक एक दूसरे के साथ जैसा संगति होना है उसका मूल्य उसने जान लिया था.
That's why we need to meditate every time on this topic that what is the strength of my fellowship with my father.
और इसलिए हम लोगों को हमेशा ध्यान करना है कि मेरा पिता के साथ संगति का महत्वपूर्ण क्या है.
If Paul is required such kind of a fellowship before the beginning of his ministry, what is the importance that in my life should have that fellowship it should be.
और पौलुस को इसका जरूरत था अपना सेविकाई शुरू करने से पहले. तो मेरा कितना जरूरत है कि मैं आपस में संगति का जरूरत मैं समझ सकूं.
Hebrews chapter 12 verse 14 is also telling us the same thing that Holy Spirit gives us opportunity to live in His light so that we can have a fellowship with God and sanctified life and peace with all the brothers and sisters.
Hebrews 12 ka 14 mein aisa likha hai.
Sanctification with God and peace with all men.
Sab mein sabse mel milap rakhna aur us pavitrata ke khoji ho jiske bina कोई परमेश्वर को कदापि न देखेगा.
सो दिस इज द थिंग दैट गॉड इज आल्सो लुकिंग अप इनटू अस दैट वी शुड हैव टू बी सैंक्टिफाई आवर रिलेशनशिप. वी शुड हैव टू बी क्लींस फ्रॉम ऑल आवर सिंस.
और ये परमेश्वर चाहता है कि हमारा सारे एक दूसरे के साथ संबंध में हम एकदम शुद्ध होना चाहिए. हम परमेश्वर के सामने साफ होना चाहिए.
बट दिस इज ओनली अ वन थिंग वन रिलेशनशिप बट अनदर रिलेशनशिप इज आल्सो मस्ट ओवर देयर दैट इज पीस विद ऑल मेन.
हम लोग परमेश्वर के साथ भी एकदम शुद्धता से होना है जो एक तरफ से रिश्ता हम लोग सोचते हैं और एक दूसरे के साथ जो हमारा रिश्ता है वो भी हम लोग एकदम पवित्र संभालना है.
Then we can able to call as a true worshipper of God.
तो ही हम लोग परमेश्वर का सच्चा जो आराधक या बुलाया जा सकता है.
In Revelation chapter 22 verse 14 is also written same thing that those who wash their robes in the blood of lamb they can have fellowship with him.
और प्रकाशन वचन
22:14
22 का 14 में ऐसा लिखा है धन्य है धन्य वे है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेगा.
सो दिस सिटी विच वी आर गोइंग टू गेट एंट्री इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस एंट्री फॉर दिस. दिस इज टू हैव वन अनदर फेलोशिप with one another and fellowship with God.
और ये नगर में हमारा प्रवेश क्यों हो रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के साथ निकट आ सके और उसके साथ संगति में आ सके और एक दूसरे के साथ संगति में हम लोग बिता सके.
सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस ओनली वन टॉपिक दैट इफ जेनेसिस इज टीचिंग अस one thing that fellowship with God and fellowship with one another, and in Revelation also is telling us the same thing that we should have a fellowship with Him. We should have to learn more and more days to days to come, that when we want to prepare our mind and soul and heart for His fellowship and fellowship with one another.
और शुरुआत जो उत्पत्ति है उसमें भी परमेश्वर के साथ संगति के साथ शुरू हुआ और प्रकाशित वचन में जो अंत होता है उसमें भी परमेश्वर के साथ संगति में अंत होता है. और इसलिए हमारा जीवन में परमेश्वर के साथ जो संगति है और एक दूसरे के साथ जो संगति है उसका महत्वपूर्ण जान के हम इसमें और बढ़ना चाहिए.
Yes, and we should have to learn these things. And I am also personally learning these things. And I am encouraging all of you to learn this fellowship. This kind of a fellowship we need, and we have to be developing it.
और ये हम हमारा जीवन में और सीखना चाहिए. मैं भी सीख रहा हूँ. हम ये सीख के और इसमें बढ़ना चाहिए.
Thank you.
Thank God for the wonderful message we heard this afternoon.
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का हमारे जो हमने वचन से बांटा है.
We read in 1 John chapter 1.
पहला यूहन्ना इसका पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं.
Verse 6.
1 John 1:6. छठवां वचन.
If we say that we have fellowship with him, that is with God, and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते.
So the having fellowship with God,
तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के साथ में जो सहभागिता है
will reflect in our life.
वो हमारे जीवन में ये परिवर्तित होती है.
On one side we are saying we are walking in fellowship with God.
हम एक साथ में एक वक्त पे बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में सहभागी हैं.
At the same time we cannot walk in darkness.
और उसी समय हम अंधकार में नहीं चल सकते.
In the previous verse it says that God is light.
क्योंकि इसमें कहा गया है कि परमेश्वर ज्योति है.
And in him there is no darkness at all.
और उसमें अंधकार कतई नहीं है.
And we also see in the next verse.
और उसके आगे के वचनों में भी हम अगर पढ़ सकते हैं.
If we walk in the light.
अगर हम उसकी ज्योति में चले,
as he himself is in the light,
जैसे वो ज्योति में है,
we have fellowship with one another.
हमारी एक दूसरे के साथ में सहभागिता रख सकते हैं.
So that's a wonderful thing. How we have fellowship with one another.
और एक काफी रोमांचक चीज है कि हम अपने एक दूसरे के साथ में किस तरह से सहभागिता रख सकते
हैं. And how we have fellowship with God.
और हम हमारी जो सहभागिता है परमेश्वर के साथ में कैसे रख सकते हैं.
We should walk in the light.
हमें उस ज्योति में चलना है.
What is the meaning of walking in the light?
और इसका क्या मतलब है कि हमें इस ज्योति में चलना है?
It doesn't mean that you have to be perfect.
इसका मतलब नहीं है कि आपको वहाँ पर परिपूर्ण ऐसा होना है.
Walk in the light means we are open.
ज्योति में चलना है मतलब कि हमें हम उसके सामने खुले हैं. हम उसके सामने प्रदर्शित हैं.
We are honest.
और हम उसके सामने ईमानदार भी हैं.
We don't make attempts to act.
हम वहाँ पर किसी तरह का एक कोई नाटक ऐसा नहीं कर सकते.
We try to be honest.
हम वहाँ पर एक ईमानदार बने रहते हैं.
We are what we are.
हम जैसे हैं वैसे हम.
And that is one meaning of being walking in the light.
और वही एक है उसका स्वरूप कि हम ज्योति में चल रहे हैं.
So being honest is something we should always keep in our heart.
और इसका हमें खुद के प्रति ईमानदार और परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना भी एक प्रकार हो सकता है ज्योति में चलने का.
I remember one of the which something which helped me, which blessed me is when I met brother Zach some years back.
एक बात जो थी जो मुझे काफी सहायभूत हुई जब मैं पहली बार एक बार मिला था ब्रदर जैक को तब.
So one of the thing he told which really helpful to me is.
और एक बात जो थी जो मुझे काफी मदद कर गई.
He told me that no, you don't strain to be what you are not.
और वहां पर उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप उस बात के लिए कोशिश मत कीजिए जो आप वो नहीं है.
You don't strain to show that you are spiritual or religious.
आप इसके लिए अभी यहाँ पर कुछ भी ऐसी जद्दोजहद मत कीजिए कि आप काफी आत्मा में है और काफी विश्वासु है.
He strongly encouraged, learn, seek to be honest.
और वहां पर उन्होंने ये बताया था कि आपको सीखना है और
and,
उसके लिए वहां पर आपको ईमानदार रहना
है. And God loves honesty people.
और जो प्रभु है परमेश्वर जो है वो ईमानदार लोगों से प्रेम करता है.
When you are honest, God will progressively make us perfect.
जब आप प्रभु के प्रति प्रामाणिक और ईमानदार रहते हैं तब आप परिपूर्ण हो सकते हैं.
So that is something which we always keep into heart. We should seek to be honest.
तब हमें यहाँ पर पहली ये बात के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम ईमानदार उसके प्रति.
We should love the light falling on our life.
हमें इस बात से प्यार करना चाहिए कि हम उसके सामने उसकी ज्योति में चल रहे हैं.
I am not intending to hide anything from my life before
मैं
God
कोई भी बात उसे छुपाना
brothers.
नहीं चाहता हूँ.
So let the light of God fall in me.
तो वो जो ज्योति है वो मुझ पर आए.
And I am trying to walk in the light.
और मुझे ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसकी ज्योति में चलना है.
I know hidden agenda to hide anything from my life before
और मुझे ऐसी कुछ
भी
बात नहीं करनी चाहिए कि जो उससे छुपा के मैं रख सकूं.
And I think that is something will promote fellowship.
और यही जो बात है जो हमें हम एक दूसरे के साथ में सहभागिता करने के लिए सहायभूत
करेगी. We all can seek to have a open heart before God and before others.
और हमें हमारे जो हृदयों को है जो वो खुला रखना है प्रभु के सामने और अभी हमारे भाई बहनों के सामने.
And that will encourage that environment of fellowship.
और वही हमारे जो इस वातावरण को हमें उत्सुकता बढ़ाएगा हमारी कि हम एक दूसरे के साथ में सहभागी हो सके.
And trying to be honest.
और उनके प्रति ईमानदार रह सके.
And in that process it is written that then the blood of Christ will cleanse us from all sin.
और तब है कि वो प्रभु का जो लहू है वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है.
When we are not trying to hide anything from God.
और जब हम कभी कोई भी बात उसे छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं.
And I'm not artificially trying to act religious or spiritual before my brothers and sisters.
और जब हम किसी तरह का ऐसा ढोंग नहीं करते हैं कि हम बड़े धार्मिक है बड़े विश्वासु है दूसरों के सामने.
I just try to walk and live a sincere life.
और जब हम उसके सामने ऐसा पूरा एक ईमानदारी का जीवन जीते हैं.
Then the blood of Christ, the blood of Jesus and of God will cleanse us from all sin.
तब उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है.
We read in 2 Corinthians chapter 7.
और दूसरा करिथियों इसका सातवां अध्याय.
There Paul is telling this something about fellowship with one another.
और यहाँ पर पौलुस बताता है कि हमें एक दूसरे के साथ में सहभागिता कैसे रखनी
है. 2 Corinthians 7 verse 2.
सातवां अध्याय दूसरा करुतियों इसका सातवां अध्याय और इसका दूसरा वचन.
मेक रूम फॉर अस इन योर हार्ट्स. वी हैव रॉन्ग्ड नो वन. वी करप्टेड नो वन. We took advantage of no one.
हमें अपने हृदयों में जगह दो. हमने किसी को अन्याय किया है न हमने किसी को बिगाड़ा है और न किसी को ठगा है.
The person such as Apostle Paul is requesting the believers in Corinth.
और यहाँ पर करिंथियों के जो विश्वासी जन है उनको विनती कर रहा है संत पौल.
Give some space in your heart for me.
कुछ अपने हृदयों में मुझे जगह दी दीजिए.
So that is what in silent words brothers and sisters seeking from us.
और यही है जो हमें एक जो अनुरोध है सभी भाई और बहनों से कि हमें सभी से विनती करनी है कि आपके हृदयों में हमें जगह दीजिए.
Give a little place in your heart for me.
और यही है कि हमें थोड़ी सी जगह आपके हृदयों में दे दीजिए.
Please make room in your heart for me.
वो जगह अपने हृदयों में हमें मुझे दीजिए.
This is something we can ask ourselves.
और ये हमें पूछनी है ऐसी बात.
In our heart is there place for others?
क्या हमारे हृदयों में दूसरों के प्रति वैसी जगह है?
In our heart is there place for our brothers and sisters?
क्या हमारे हृदयों में हमारे भाई और बहनों के प्रति वैसी जगह है?
Of course we can say that no, we have place in my heart for some brothers and some sisters.
ऐसा हम कुछ भाई के लिए और कुछ बहनों के लिए हम कह सकते हैं क्या?
So we can ask this to everyone with whom we are fellowshipping.
और ये हमें पूछना है हमारे हृदय से कि क्या हर एक के लिए मेरे हृदय में स्थान है कि नहीं है.
In my heart is there a place for that brother?
क्या मेरे हृदय में उस ब्रदर के लिए जगह है?
In my heart is there a place for this sister?
क्या मेरे हृदय में उस सिस्टर के लिए वहां पर उस जगह है?
In the same chapter, 2 Corinthians chapter 8.
दूसरा करिन्थियों जिसका आठवां अध्याय.
This is something very really helped me in my Christian life.
यहाँ पर ये बात मुझे काफी मदद की है मेरे विश्वास जीवन में.
Paul is talking about the believers in Macedonia.
यहाँ पर मसीदोनिया के जो विश्वासी है उनके बारे में बताया गया है पौल ने.
It is in the context of their, even though they were very poor and they had a heart to give.
वहां पर है कि वहां पर उनको बताया गया है कि उन्हें दान धर्म करने में बड़ा उनका हृदय था और वो बड़े दानवीर थे.
And it is written that they are in deep poverty.
और वो वहां पर बताया गया है कि वो काफी दरिद्र अवस्था में भी थे.
Even though they themselves live in deep poverty, they had a heart to give to others, other gods.
उनकी खुद की गरीबी के उन्होंने परे रखकर वहां पर उन्होंने एक दानशूलता वहां पर दिखाई थी.
So what those believers Paul is telling in verse 5, 2 Corinthians chapter 8 verse 5.
दूसरा करिन्थियों इसका अध्याय 8 और इसकी 5वें वचन में.
They gave themselves first to God.
उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने आप को प्रभु को पहले दिया.
First they gave, they just abandoned themselves to Jesus.
उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु को पहले समर्पित किया.
And as a second, they gave to brothers and sisters.
और फिर उन्होंने उनके भाई और बहनों को वो दान किया था.
This is a mark of fellowship.
और ये भी एक चिन्ह है वो सहभागिता.
We understand the first we give ourselves, we surrender ourselves completely. We think that I belong to Jesus. No, we a true Christian always think a complete surrender. I don't belong to this world. I don't belong to devil. I belong to Jesus.
तो हम हमेशा हमारे विश्वास जीवन में ये कहते हैं कि मेरी जो सहभागिता है वो प्रभु परमेश्वर के साथ में है. मैं किसी के लिए मतलब ऐसा अपने आप का समर्पण नहीं कर सकता हूँ, ना ही इस दुनिया के लिए, ना मैं खुद के लिए, मगर मैं ना ही उस शैतान के लिए, मगर मैं परमेश्वर को समर्पित हूँ.
As a consequence, they are also saying, considering that I also belong to my brothers and sisters.
और उसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं मेरे भाई और बहनों को भी वहाँ पर समर्पित ऐसा हूँ.
Have you thought about that?
और क्या हमने इस बात के बारे में सोचा था?
On one side, when we surrender ourselves to Jesus.
हम एक समान एक दिशा में तो हम हमारा जो समर्पण है वो प्रभु यीशु की तरफ है.
On the other side, do we recognize that I don't belong to myself, I belong to my dear brothers and sisters in the church.
और दूसरी तरह से हम ये भी बताते हैं कि मैं अपने आप के ऊपर समर्पित नहीं बल्कि मेरे भाई और बहनों के प्रति समर्पित हूँ.
I just want to share something from Colossians chapter 3.
और कलीसियों की किताब इसका तीसरा अध्याय में से मैं बताना चाहूंगा.
Something which personally very powerfully influenced me.
और ये बात मुझे काफी परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में कार्य किया हुआ है.
Colossians chapter 3.
कलीसियों की किताब इसका अध्याय 3.
Colossians chapter 3 verses 12 and 13.
कलीसियों की किताब तीसरा अध्याय 12 और 13 वचन.
So as those who have been chosen of God.
और जो परमेश्वर के चुने हुए हैं.
Holy and beloved,
बड़ी करुणा और भलाई से
put on a heart of compassion,
भलाई और दीनता के और नम्रता और सहनशीलता.
So this is the first thing we can know. We need to think about ourselves in the when you remember about when you consider fellowship.
और हम अगर सहभागिता के बारे में सोचते हैं तो ये सारी चीजें हमें इसके बारे में सोचना चाहिए.
Put on a heart of compassion for others.
हमें बड़ी करुणा का हृदय अपने ऊपर रखना चाहिए.
And also kindness.
और भलाई.
Humility.
दीनता.
And gentleness.
नम्रता.
And patience.
और सहनशीलता को धारण करना चाहिए.
And bearing with one another.
और एक दूसरे को हमें सहना चाहिए.
No, this something which God spoke to me.
और ये जो है जो बात मुझे परमेश्वर ने सिखाई है.
No, God has blessed with such a surrounded with such a wonderful brothers and sisters.
हमें यहाँ हमारी सहभागिता में बहुत अच्छे भाई और बहनों की उपलब्धि मिली है और सहभागिता मिली है.
Such a wide variety.
और इनके उस यहाँ पर तरह तरह के उनके जो हमारे भाई और बहन हैं.
डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर्स.
इनका यहाँ पर सभ्यता उनकी अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, इनकी भाषाएं अलग है.
एंड नॉट ऑल मे बी लाइक मी.
और सभी लोग जो है वो मेरी तरह नहीं है.
दैट इज व्हाई आई शुड बी जॉयफुली बेयरिंग विद वन अनदर.
इसलिए मुझे आनंद के साथ में उन सभी की बातें को सहना चाहिए.
And I learned to deny myself when I fellowship.
और मुझे वहाँ पर मेरी सहभागिता के दौरान अपने आप को नकारना है.
It's not what I like. It's not the taste of food. What I like is not the style of singing I am used.
यहाँ पर मुझे इन बातों उनकी सहभागिता में ये बात नहीं सोचनी है कि क्या मुझे किस तरह का खाना मुझे अच्छा लगा है या फिर किस तरह के उनके कपड़े हैं.
But I want to bear everyone in my heart.
मगर मुझे उन सभी को अपने हृदय में स्थान देना है, जगह देनी है।
I want to be patient with everyone.
और मुझे उन सभी के साथ में, प्यार के साथ में और सहनशीलता के साथ में बर्ताव करना है।
Everyone is different.
क्योंकि सभी भाई और बहन एक जैसे नहीं है।
Maybe everyone may not be as zealous as I am.
और सभी लोग जैसे मेरे जैसे नहीं हो सकते हैं।
So I have to bear with everyone. We have to bear with everyone.
तो मुझे सभी के साथ में सहनशीलता के साथ में बर्ताव करना चाहिए।
We have to be patient with everyone.
और मुझे वहाँ पर उनके साथ में धीरज के साथ में बर्ताव करना चाहिए।
We learn to bear with one another.
और यहाँ पर हमारे कलीसिया में होते समय हम सभी लोगों के साथ में
बेस्ट वे आवर कैरेक्टर इज रिफाइंड।
और यहाँ पर ही है जो हमारे जो हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो चरित्र है, वो उसको निखार आता है।
See, when we are in a group of people within a group, they speak my language.
हम ऐसे हैं किसी समूह के सहभागिता नहीं कर सकते हैं कि जो हमारी ही भाषा से बात करते हैं।
They have my intellectual level.
जो हमारे ही बुद्धि के अनुसार बात कर सकते हैं।
सेम कल्चर
जी हाँ, हमारी जो संस्कृति के लोग हैं उनके साथ ही हम वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते।
सिमिलर फूड, दे हैव सिमिलर फूड हैबिट्स।
चाहे उन्हें वही खाने की चीजें अच्छी लगती हो जो मुझे अच्छी लगती हो।
इन अ फ्लश देयर इज अ कंफर्ट।
यहाँ पर मैं कहीं अपने शरीर की अभिलाषाओं को मैं पूरा कर रहा हूँ।
व्हेन वी लिव एंड इंटरैक्ट विद डिफरेंट पीपल, दैट इज व्हेन वी आर एंड बेयर विद वन अनदर।
लेकिन मैं जब दूसरों के साथ में सहभागिता करता हूँ और जब उनके सामने अपने आप को नकारता हूँ और उनकी सहनशीलता के साथ में रहता हूँ,
दैट इज आई लर्न टू डिनाई मायसेल्फ।
और वहीं पर मैं अपने आप को नकारता हूँ और मैं सीख रहा हूँ।
डिनाई मायसेल्फ इज वन सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नो विच प्रमोट फेलोशिप।
और यही है एक चीज है कि जो मुझे मेरा जो स्व नकार है वही एक चीज है जो मुझे सिखाती है सहभागिता करने की।
If I learn to deny myself, I will overlook the faults of others.
जब मैं अपने आप का स्व नकार करता हूँ तभी मैं सीखता हूँ कि मैं दूसरों के साथ में किस तरह से अच्छी सहभागिता।
I will not make big issues out of small things.
तब मैं छोटी छोटी गलतियों की मैं बड़े बड़े ऐसे कोई कारण नहीं बनाऊंगा जहां से मैं कहीं वाद या कोई प्रतिवाद हो।
Because I learn, I joyfully to overlook and overlook things.
तब मैं उन सारी चीजों को आनंद के साथ में अनदेखा कर दूंगा।
And second thing is about forgiving each other.
और दूसरी बात है कि हमें एक दूसरे की क्षमा करें।
And I remember when I was a very new Christian, I thought in the church, in the fellowship, absolutely there cannot be any problem with each other.
और मैं शुरू में जब कलीसिया में था तब मुझे ऐसा लगता था कि कलीसिया के सभी लोग बड़े ही अच्छे हैं और उनमें कोई भी खामी नहीं है।
No, when I became a new my thought in a believer's church there cannot be any problem with the believers and sisters.
और जब मैं believers की कलीसिया में आया तो मुझे ऐसा लगा कि अरे वहाँ पर के लोग तो काफी शुद्ध है, वहाँ से कोई भी गलती नहीं करते हैं।
But then when I started going, I saw a little bit problem here and there.
लेकिन मैं जब जाने लगा तब मुझे मालूम पड़ा कि उनमें क्या स्वभाव गुण है और उनके कैसे कैसे उनके बर्ताव भी कभी कभी।
So when I read these words, I got an answer.
और जब ये मैं इस वचन को पढ़ा तब मुझे समझ में आया
कि in the church, nobody is perfect.
कि कोई भी ऐसी परिपूर्ण ऐसी कलीसिया नहीं होती।
Just like I am not perfect.
जैसे मैं खुद परिपूर्ण नहीं हूँ।
Just like in the at home, my wife is bearing with me.
जैसे घर में मेरी पत्नी जो है वो मुझे बर्दाश्त करती है।
I am also bearing with her.
अभी मैं भी उनको बर्दाश्त कर रहा
हूँ। That is why we admire each other. We understand that it's not I am only bearing with her. She is also bearing with me.
So उसी तरह जैसे हम अच्छी सहभागिता कर पाते हैं जब हम एक दूसरे के साथ में सहनशीलता का बर्ताव करते हैं।
And she is abundantly forgiving me, and I have no problem in forgiving her at all.
और वो मुझे बहुतायत से मुझे वो क्षमा करती है और मैं भी उन्हें क्षमा करता हूँ।
So this word, the way it is written here is.
और यहाँ पर जो बात लिखी हुई है यहाँ पर
forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone.
तब अपराध को क्षमा करो जब भी कभी किसी पर दोष आपको लगाना हो।
So in the fellowship there can be a complaint against another. Some complaint we feel. We don't speak about complaint. We don't return, give a return complaint against anybody.
जब हमें किसी सहभागिता में किसी पर दोष लगाने की ऐसी बड़ी उत्तेजना होती है तब वो सामने वाला भी हमारे भी ऊपर दोष लगा सकता है।
We have a complaint against a brother.
मगर कहीं अपने मन के अंतर्मन में हमें अगर कोई ऐसा लगे कि किसी भाई के खिलाफ हमें दोष
लगाना
है, फिर कोई सिस्टर हो या फिर कोई बहन हो उनके खिलाफ आपको अगर दोष अगर लगाना
है, we don't even reveal, speak to anybody, but it's all inside.
कभी कभी हम अपने हाव भाव से वो दर्शाते नहीं है कि हमारे उसके प्रति जो देश दोष है.
Is there any complaint? Anybody here sitting here? Any complaint in deep inside against someone else? Like right here.
किसी के पास किसी के खिलाफ किसी को दोष लगाना है या फिर किसी को कंप्लेंट करनी है तो
Not someone in America.
जो अमेरिका में है उनके बारे में नहीं बल्कि अभी यहाँ पर इस बात के लिए हमें पूरा ईमानदार रहना है हमें इस बात को हमें मानना चाहिए कि ये जो चीजें हैं ये हमारे प्रभु के सामने
It's not unusual.
और ये हो सकता है ये कोई ऐसी अद्भुत ऐसी बात नहीं है
The reason is still, we are all still developing.
और क्योंकि ये इसका कारण ये है कि हम इसमें सीख रहे हैं
We are all still growing, trying to be perfect, growing, making progress.
हम इस बात में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम उसके प्रति परिपूर्ण हो रहे
हैं। So we can all in that process give some inconvenience to others.
हम इस तरह से भी नहीं है कि हमें किसी के दूसरे को वहाँ पर हमें तकलीफ देनी
है। It's like we all see sometimes we refurbish our house, painting and some work and all. You know how inconvenient it is.
जब हम देखते हैं कि हमारे घर में कभी अगर पेंटिंग हो रहा है या फिर साफ सफाई रिनोवेट हो रहा है तब हम किसी को देख सकते हैं कि कैसा वो दूसरों के प्रति तकलीफ हो सकता है
इन द सेम वे एज सम वर्क इज हैपनिंग गॉड इज एट वर्क इन अस फिलिपिन सेज दैट इवन नाउ गॉड इज वर्क इन मी
जैसे हम उसी प्रकार प्रभु भी हमारे जीवन में जो काम कर रहा है
सो वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस इट इज नॉट कंप्लीट येट वी हैव नॉट बिकम परफेक्ट
और हम अभी परिपूर्ण बनने की उस स्टेज में है
So one day I will be perfect.
और लेकिन एक दिन मैं परिपूर्ण हम बन जाएंगे.
So as each one of us, God is doing a work, and that work is progressing. We are still in the way of progress.
तब हमारा जो काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है और हम उस परिपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं.
It is a truth that it can give some trouble to others.
और ये भी सच्चाई है कि शायद हमारी इस यात्रा के दौरान शायद किसी को हम तकलीफ दे पहुंचा सकते हैं.
In our speech, in our dealings.
हमारे जो भाषा करने के तरीके में या फिर हमारे
we may not fulfill some promises we have told
हम हमारे व्यवहार के द्वारा किसी को तकलीफ दे सकते हैं हम किसी को बताया हो और वो बात पूरी नहीं की
and that is a reality
और ये जो सच्चाई है
but then what we should do
मगर हमें उस वक्त क्या करना चाहिए
so by reading these words I understood in the church one can have a complaint against another
तो मुझे यहाँ पर इस बात से मालूम पड़ा इस वचन से कि हमें एक दूसरे के ऊपर शायद हमें कोई कोई कंप्लेंट हो सकती है
या झगड़ा हो सकती है that will become less and less as we grow
और लेकिन जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तब ये जो दोष लगाने की आदत होती है वो कम होते
जाते and when we see the Lord there will never be a complaint after that
और जब हम प्रभु के सामने आते हैं और जब प्रभु हमारे सामने आते हैं तब हमें कोई भी उसके प्रति किसी के प्रति दोष नहीं रहता
but here there is a solution
लेकिन यहां पर उसका एक हल भी बताया है
there is a complaint against anybody deep inside we don't I am not talking something we are normally very good we don't speak that I will not tell this brother I have a complaint against you normally
तो मुझे ये भी नहीं कहना है कि हमें किसी के अपराधों को हम जानते नहीं है या फिर हमें किसी को बताना नहीं है कि ये क्या कोई अपराध अगर करता है तो
सॉल्यूशन इज जस्ट लाइक जीसस फॉरगिव मी आई विल आल्सो फॉरगिव दिस डियर ब्रदर
तो इसका हल एक इस तरह है कि जैसे मुझे प्रभु ने क्षमा की है वैसे मुझे भी उनकी क्षमा करनी चाहिए
इवन विदाउट ही नोइंग आई हैव अ कंप्लेंट बट आई चूज टू फॉरगिव दैट ब्रदर
भले ही उन्हें मालूम हो या फिर ना हो लेकिन उनके बिना बताए उनको भी हम क्षमा कर सकते हैं
एंड आई हैव दैट कंप्लेंट अगेंस्ट दैट सिस्टर बट इन माय हार्ट आई चूज टू फॉरगिव हर
अगर मुझे कोई ऐसी तकरार है किसी एक बहन के बारे में भी फिर भी मैं वही चुनता हूं कि मैं उसे क्षमा कर दूं
वेरी ऑफन नो बाइबल डजंट से यू टेल दैट यू हैव फॉरगिवन व्हाट यू से फॉरगिव इट हैपेंस इन आवर हार्ट Forgiveness happens in our heart.
वचन हमें बताता है कि हमें उसे क्षमा कर देनी चाहिए हमें ये बताने की जरूरत नहीं है हमें उन्हें क्षमा कर देनी
But sometimes there may be an opportunity and need to say also, I have forgiven. But basically it has to happen in our heart.
कभी कभी हमें अवसर मिले तो हमें बताना चाहिए कि हमने उन्हें क्षमा कर दी है
So let us, dear brothers and sisters, choose as we sit here, as we listen to me, in our deep inside, if we have some complaint against a brother or sister sitting here. Let's not talk about the global fellowship.
So सभी से अनुरोध है कि जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अगर एक दूसरे के प्रति हमें कोई भी अगर कंप्लेंट है तो हम अपने एक दूसरे की क्षमा करें
And I can tell you, it's not easy to forgive others.
और ये काफी कठिन जाता है कि एक दूसरे को क्षमा करना.
It's not especially someone close to us has given us a hurt is like a piercing with a knife in our heart.
ये इस तरह से है कि कोई हमें जैसे कोई दुख पहुंचाता है वो इस तरह से हो सकता है हम एक दूसरे को तलवार से चोभाते हैं मतलब उससे आर पार
इज हार्ड इज नॉट इजी
और ये काफी कठिन पड़ता
है आई सीन इन माय ओन लाइफ आई कैन से दैट इज नॉट इजी आई विल से ऑनेस्टली
और मैं अपने जीवन से बता सकता हूं कि ये काफी कठिन चीज है
बट गॉड स्टिल गिव्स ग्रेस टू फॉरगिव
लेकिन हमें परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करता है कि हम उनकी क्षमा
करें इट्स ओनली विद द ग्रेस which Jesus imparts to us only we can forgive others
aur prabhu yeshu ne hame jo kripa pradan ki hai us kripa ke anusar hum ek dusre ki kshama
and Jesus is willing to give that grace without any measure
aur hame prabhu ye anugrah jo hai wo bahutayat ke sath mein dene ke liye taiyar
hai irrespective of the depth of the hurt still Jesus no we have to accept it. I someone has hurt me it is a truth isn't it I did not say that I am not hurt or he did not hurt that is a truth we can accept it
hum is baat ka puri tarah se samman karte hain ki kisi cheez se aapko dukh pahuncha hai aur wo dukh pahuncha hai aur uski jo wo jo ghaav hai wo laga hua hai
and but still we can forgive choose to forgive that person
lekin fir bhi aap us vyakti ko kshama kare
I remember someone's God set me free from the life of Joseph
और एक इंसान है जो मुझे अब तक याद है भाई है जिनकी वजह से मुझे पता चला कि जिन्होंने मुझे जोसेफ के बारे में
यू नो आई डोंट थिंक एनी बेटर एग्जांपल कैस ए पर्सन सच एज जोसेफ हु वाज हर्ट बाय अदर्स देयर इज प्रोबब्ली नो वी मे नॉट बी नो एनीवन एल्स एंड नेदर ईच वन एनीवन
और हमें पता है कि जोसेफ को उनके जीवन काल में किन किन लोगों ने उन्हें दुख पहुंचाया था
हिज ओन ब्रदर्स chose to throw him in a pit first
unke khud ke bhai logon ne unhe gadde mein dal diya tha
later he was they went relocate better to sell him as a slave and make some money and his own brother sold their own brother to some merchants and took money from them
aur phir usko utha kar wahan se unhone ek vyapariyon ko bech diya tha
took we can think that thinking of Joe one can have I am rejected by everybody my brothers they don't want me
ab hum is baat se soch sakte hain ki Joseph kaise soch raha hoga ki koi har ek insaan ne mujhe dhikkar diya
and they took him to Egypt and they again sold him to Potiphar
और वहां पर वो इजिप्ट में उनको लेके गए और वहां पर भी उन्होंने उस पोटीफर नाम के उस मालिक को भेज दिया था
एंड ही वांटेड टू गिव अ लाइफ बिफोर गॉड एंड इवन देयर दैट नो यू नो ही फॉर समथिंग व्हिच ही नेवर वांटेड टू डू दे पुट द ब्लेम ऑन हिम पुट हिम टू प्रिजन
और पुटी करके घर में भी जो वो जोसेफ चाहता था कि परमेश्वर के भय में जीना लेकिन वहां पर भी उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनको जेल में जाना पड़ा
and even the prison people co-prisoners whom he helped and they promised when they are out they will help him they promise but they conveniently forgot
और वहां पर उस तुरुंगवास में भी उनको वहां पर पता चलता है कि वो उन्होंने किसी दो आदमियों की मदद की थी जो बेकर और कप बेरर था जिनकी सहायता करने के बावजूद भी वो भी उनको भूल गए
but Joseph forgave everyone
लेकिन जोसेफ ने हर एक को क्षमा की
इन द लास्ट चैप्टर ऑफ जेनेसिस 50 इट इज रिटन
उत्पत्ति के 50वें अध्याय में ये बात लिखी हुई है
व्हेन जोसेफ हिज ब्रदर्स केम एंड आस्क्ड हिज फॉरगिवनेस फॉर ऑल द रॉन्ग दे डिड
जब उनके भाई जोसेफ के उनके पास में इकट्ठा हुए और उन्होंने जितनी भी उनके साथ में बुराइयां की थी उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी
था इट इज रिटन दैट ही फॉरगेव देम एंड ही कंफर्टेड देम
यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने जोसेफ ने वहां पर उनकी सभी की क्षमा की और उनके सभी को उनको तसल्ली भी दी
सो दैट इज अ ग्लोरियस थिंग वी कैन डू वी जस्ट वी नीड नॉट बी जस्ट यू नो बाइबल सेज आई नीड टू फॉरगिव आई जस्ट फॉरगिव देम
और यहाँ पर ये बड़ी महिमा की बात है कि हमें सीखनी है चाहिए कि आपको क्षमा भी करनी है और वो भूल भी जाना
व्हाट आर पीपल डू सम रॉन्ग टू दे देमसेल्व्स फील बैड सो आई शुड नॉट हैव डन दैट टू माय ब्रदर
अभी हम सभी लोग जो जानते हैं कि उन्होंने क्या हमसे बुराइयां किया है तो हमें उनसे भूल जाना चाहिए
फॉरगिविंग हिम इज अ बेसिक थिंग मिनिमम थिंग
और वो उन्हें क्षमा करना है ये काफी एक मूलतः ऐसी एक चीज होती है
बट गो अ सेकंड स्टेप कंफर्ट इज ओके ब्रदर इट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस दैट इज हाउ वी कैन कंफर्ट अदर्स हु हैव ऑफेंडेड अस
लेकिन उसके बाद में भी हमें यहाँ पर उनको तसल्ली देनी चाहिए कि ठीक है भाई ठीक है बहन ये होता है और ऐसा होता है
द न्यू कवेनेंट गॉड गिव्स अस ग्रेस टू डू दैट नॉट ओनली फॉरगिव अदर्स हु हैव डन अस रॉन्ग बट वी कैन इवन गो एंड कंफर्ट देम
और नए जीवन में हमें ये इस तरह का अनुग्रह प्राप्त हुआ है कि हमें ना ही लोगों को क्षमा करनी है बल्कि उन्हें तसल्ली भी देनी है आमीन
रियली वेरी एनकरेजिंग टॉपिक टू हैव फेलोशिप विद गॉड एंड विद मैन एक बहुत ही उत्साहित करने वाला एक सब्जेक्ट है एक बाग है कि कि हमें जो है परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ जो सहभागिता में बने रहना है, जैसे कि मत्तियो के 6 के 12 और 13 में वहाँ पे आई रियली अंडरस्टैंड दैट व्हाई गॉड हैज व्हेन जीसस इन हिज प्रेयर ही सेड फॉरगिव अस आवर डेब्ट्स एज वी हैव फॉरगिवन अदर्स डेब्ट्स दैट इज द सो दैट आई हैव माय राइट रिलेशनशिप विथ मैन. And then 13 it says, and lead us not into temptation, deliver us from all evil. Dusra 12 mein aisa kehta hai ki apradhiyon ko shama karne ke vishay mein, ki jaise aap shama karte ho waise main shama karu. Aur 13 mein aisa likha hai ki mujhe koi pariksha mein na dalna aur mujhe paap se bachana. Ye do bhag mein mujhe dono cheez mujhe dikhai deta hai, ek ki parmeshwar ke sath jo mera rishta kaise bana lena bina paap ka, bina विदाउट एनी ईवल, कोई पाप के बिना मुझे रहना है, और दूसरे लोगों के साथ कि मैं उनको क्षमा करूँ, उनको अपनाऊँ. सो दैट इज गिवन ओवर हियर. तो और एक भाई ने, अबू ब्रदर ने सेड शेयर किया दैट मैं अपने आप को नहीं दिखा, आई डोंट प्रिटेंड, यू नो, दिखावा ना करूँ दैट आई एम होली. आज दोपहर में आई वॉज कमिंग आउट, माई डॉटर सेड that before you were better, that's what, right, Grace said that, both of them, ki pehla bahut acha tha, abhi mere andar matlab I am very free enough now, means I am not like very holy like before, right? That's what, right? So that it came to my mind, mai yahi ki before I was pretending, maybe that they liked it that I was showing. So now I'm not pretending. So that is which you are seeing what I am. So that is where the spirit touched me, saying that okay, what it how jis tarike se atma lata. Pehle to main dikhawa karta tha ki main pavitra tha, aur abhi wo nahi hai. Mujhe wo dikhana bhi aata nahi hai. I cannot show that. So whatever, even if I speak, even if I talk at home, I feel that freedom, that not to show that what dikhane ka nahi ki main ekdam pavitra hai, ghar mein bhi ekdam cheezon ko sab control mein rakhu aur bolun ki aisa karna hai waisa karna hai. No, that is not the way. To ye ek baat jaise ki brother ne share kiya, mujhe bahut acha laga, that is like not to pretend, kyunki when I am pretending, jab main pretend karta hu to main yahi dikhata hu that, you know, I am just building a temporary cover, हल्का सा एक ऐसा छिलका बनाता हूँ जिससे वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है. सो आज जो सब्जेक्ट जो है, प्रभु ने जो सिखाया है, परमेश्वर ने, कि हमें वो फेलोशिप में बनाए रहना है, और जैसे कि वो जो कोलोसियों का 3 में हमने जो पढ़ा है ना, फॉरबेयरिंग, एक दूसरे को हम लोगों को मतलब सहना है, मतलब बेयरिंग विथ वन अनदर, एंड कोई कंप्लेंट नहीं रखने का, मतलब किसी के साथ कोई ऐसा कुछ अगर है, मैं कास करके बोलता ऐसा कुछ कंप्लेंट है तो मुझे माफ कर दो भाई और बहनों. सो आई वुड रियली फ्रॉम माय हार्ट दैट आई आस्क दैट नॉट टू कीप एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग, सो इफ एनी वेज दैट देयर इज सम हर्ट और समथिंग, लाइक टू बेयर वन एन अदर, दैट शुड बी देयर. सो रियली थैंक गॉड फॉर दिस वर्ड, एंड दैट इन द डेज टू कम दैट वी ऑल, गॉड हेल्प्स अस टू ग्रो इन दैट ट्रू फेलोशिप, एंड वी ऑल ग्रोइंग थ्रू दैट, एंड एज वी लर्न. And as brother said that the spirit, the Holy Spirit helps us in that growth. Pravitra Atma jo hai, wo hi hume chalata hai. And we have to be in that connection. Matlab, us sahbhagita mein hume bana rehna hai. Agar wo toot jayega, then both the cords are cut. Manushya ke saath bhi cut ho jayega aur Parmeshwar ke saath bhi cut ho jayega. To mujhe wo Pavitra Atma is the only one which keeps us in that connection. Even agar main paap mein girta hoon, to that God helps me to go and tell, God help me and reconnect my life into you. So Jesus is there and he is there and with his full grace helping out and standing and to bless us and to you know, apnane ke liye Prabhu tayyar hai. Praise the Lord.
So I was very much encouraged by what we heard from the life of Brother Paul.
से काफी उत्तेजना प्राप्त हुई जब हम संत पॉल के बारे में जो पढ़ते हैं तब.
तो मैंने वो जो दैट That one thing about Paul is he always sought fellowship and he knew what fellowship was.
और संत पॉल के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो सहभागिता हमेशा चाहते थे और नई सहभागिता बनाने के लिए उत्सुक रहते थे.
And one aspect of fellowship is that I speak when not just forgive, but if something is wrong, I can also speak to someone.
और एक महत्वपूर्ण ऐसी बात है सहभागिता में कि मुझे वहां पर ना ही दूसरे की क्षमा करनी चाहिए बल्कि उस बात को संपूर्णतः भूल जाना चाहिए. उसके बारे में बताना भी नहीं चाहिए. आपको उसके लिए बताना चाहिए कि आपने जो कहा गलती.
So sometimes what happens that some things we can ignore.
और कुछ चीजें हैं जो जिनको हमें अनदेखा करना चाहिए.
And we can forgive.
और उन्हें हम क्षमा भी कर सकते हैं.
But some things if somebody has seen something in me which has to be told, that needs to be told.
हाँ, लेकिन कोई चीज मुझे अगर बताई जाती है कि आप में ये खामी है तो वो हमें चीज बतानी चाहिए.
Because we see that in Galatians,
गलतियों की किताब इस यहाँ पर हमने पढ़ते हैं वहाँ पर.
When we know that story, I'll just say that when Peter was converted, he had this problem about this his background because he was from a Jewish background. So meeting Gentiles was little bit an issue for him.
जब पतरस था वहाँ पर वो एक इब्रानी था और उसको एक इस बारे में बड़ी हचकिचाहट महसूस होती थी कि क्या हम जो असंती बेसंती लोग हैं उनको हम सुसमाचार सुनाएं कि नहीं सुनाएं.
So he was the first person who preached the gospel to them.
और वो भी एक पहला इंसान था कि जो उन्हें उन सबको जैसे कॉर्नेलियस के परिवार को उन्होंने सुनाई थी सुसमाचार.
But when he was with the Jews and Gentiles came, he was with the Gentiles and he was eating with them. But when the Jews came, he was a little scared. Especially some main big leaders of the Jews came. He was a little scared. He thought maybe they will not like it. Let me only mingle with the Jews now.
और जब वहाँ पर उन्होंने उनकी जो सहभागिता थी जो कार्नोलियस जो इब्रानी नहीं था वहाँ पर उनके साथ में जब सहभागी था तब वहाँ पर जब इब्रानी लोग आए तब उसे काफी हिचकिचाहट महसूस हुई थी.
Especially main leaders like James and all might have come, so he thought that he will just withdraw and sit with only the Jews so that they are not upset.
और तब उस वक्त वहाँ पर याकूब और उनके बाकी के शिष्य जन जो आए थे जो इब्रानी थे वो आए थे और जब उन्हें वहाँ पर लगा था पतरस को कि हम वहाँ से वो निकल जाए और इब्रानियों के साथ में बैठे.
So that's what we read, and when Paul saw it,
और जब पौलुस ने ये बात देखी,
see, Paul is a very junior person compared to Peter, who is the main apostle chosen by Jesus.
और पतरस जो था वो मुखिया था वहाँ पर का, लेकिन पौलुस जो था वो नया एक शिष्य बना हुआ था, जो अभी वहाँ पर उस सभागीता में आए थे.
And when we read in verse Galatians 2:11,
और गलतियों की किताब दूसरा अध्याय और उसके 11वें वचन में हम पढ़ते हैं.
It says, when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face.
जब कैफा अंतिकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया.
So that is what is fellowship.
और वो भी एक तरह की सहभागिता है.
So Paul did not go around and say, see, this is what Peter is doing. He is mingling. He is doing hypocrisy. He didn't go around and telling 100 people about it.
और पौलुस जो था वहाँ पर किसी दूसरे को जाकर ये बता नहीं रहा था कि भाई देखो पतरस एक ढोंग कर रहा है और अपने आप को वहाँ पर जो गैर इब्रानी थे उनके साथ में सहभागिता.
He had the courage to withstand him and tell him to his face.
और उनके पास में उतना धाड़स था कि वो वहाँ पर जाके उनके मुंह के सामने उनका धिक्कार कर सके.
So there is one aspect where we can tell the truth in love.
और ये भी एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर हमें प्यार से अपने भाई की जो गलती है उसे बताना चाहिए.
We read in Ephesians chapter 4.
और इफिसियों की किताब इसका चौथा अध्याय.
From 14 and 15.
और इसकी इफिसियों की किताब चौथा अध्याय और 14 और 15 वचन.
As a result, we are no longer children tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by trickery of men, by craftiness and deceitful scheming. But speaking the truth in love, we are to grow in all aspects into Him who is the head, even Christ.
तब हम आगे के बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम के युक्तियों की और उपदेश की हर बायार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम की सच्चाई से चलते हो और सब बातों में जो सिर है उस मसीह में बढ़ते जाएं.
So it is not just speaking the truth, but it's speaking the truth in love.
लेकिन यहाँ पर यह बात नहीं है कि हमें सच्चाई बतानी चाहिए लेकिन उस सच्चाई को हमें प्रेम के स्वरूप में बतानी चाहिए.
If I do not have love, I need to wait till I have love and then I can speak the truth.
अगर मेरे पास उस बात को बताने के लिए पूरा प्यार नहीं है मेरे दिल में तो मुझे उस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद ही मुझे वो सच्चाई उनके सामने लानी चाहिए. आमीन.